ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा की 90 सीटों पर आज एक ही चरण में चुनाव सम्पन्न हुए, जहां 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 90 सदस्यों के लिए विधानसभा के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये चुनाव प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के भविष्य तय करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और 1000 से अधिक अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। आज हम इन्हीं चुनावों पर गहरी चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस चुनाव में मतदाताओं की क्या उम्मीदें रहीं, प्रमुख पार्टियों की रणनीतियां क्या क्या रहीं और कौन कौन से चुनावी मुद्दे पटल पर रहे। इस पर आज विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। जयंतो जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद आपको भी।
जयंतो जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आज संपन्न हुए तो उसको कैसे देख रहे हैं और क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे।
काफी दिन से इसकी लड़ाई चल रही थी, आपको मालूम ही है
जी।
और एक तरफ से बीजेपी, दूसरे तरफ से कांग्रेस, पर मत लोगों ने अपना अपनाया है, दिया है और काफी अच्छी संख्या में दिया है, तो इससे लगता है कि कम से कम बदलाव की एक कह सकते हैं कि एक दिशा दिख रही है किसी किसी लोगों को।
और प्रमुख मुद्दे इसमें क्या क्या रहे ये भी आप हमारे श्रोताओं को
देखिए। मेन मुद्दा तो यही है अभी कि एक तरफ से विकास, क्योंकि हरियाणा में विकास काफी हुआ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ से बेकारी बढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा में पहले बेकारी की समस्या नहीं थी बहुत ज्यादा, क्योंकि हरियाणा काफी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, एग्रीकल्चर भी वहां पे काफी अच्छा है, इसलिए बेकारी की समस्या इतना नहीं थी। इस बार क्योंकि दिख रहा है ये, और इसलिए उसका एक कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसमें कुछ उसके लिए थोड़ा बहुत चिंता है, सोच है वो किस तरफ जाए। वादे तो दोनों तरफ से मिले हैं कि इनके लिए इतना नौकरियां बनाई जाएगी, तो वो किस तरफ झुकेंगे वो देखने पड़ेगा, और उन्हीं का वोट एक्चुअली कह सकते हैं एक तरीके से डिसाइसिव वोट रहेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, युवा पीढ़ी की क्या सोच है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा, किस तरफ आपका पल्ला भारी हो।
और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा क्या जानकारी लाए हैं, आइए सुनते हैं।
हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। अब तक 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। मतदान को लेकर युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी खासा उत्साह देखा गया। 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। मतदान के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रही। विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों, खिलाड़ियों और राजनेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और दिन भर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रहे 1031 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया, जिसका खुलासा अब मतगणना के दिन 8 जून को होगा।
जयंत जी, युवा पीढ़ी की आपने बात की, क्या एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, क्योंकि युवाओं के बीच ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ता है।
एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी इशू है उनके लिए, क्योंकि पढ़े लिखे बेकार हैं बहुत ज्यादा, और वो सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो आप या तो उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको आप किसी तरफ नौकरी दें, या आप उनके लिए, आप अगर स्किल डेवलपमेंट करके ही या एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाए, क्योंकि हम जिन सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इस वक्त पैसे लगा रहे हैं, वो ज्यादातर सेक्टर्स कैपिटल इंटेंसिव है, वहां पे आपको रोजगार कम दिखेगा। आप चिप मैन्युफैक्चरिंग पकड़ो या आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पकड़ो, ये सारे बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव उतना नहीं है जितना ना ये कैपिटल इंटेंसिव है। तो उसी लिए नए पीढ़ी का अगर आप सोच रहे हैं, ये जरूर इससे अट्रैक्टेड होते हैं, परंतु साथ ही साथ में इनको नौकरी भी चाहिए, तो वो एक बड़ी बात है, एक बड़ी मुद्दा है।
अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनावों की जो 2019 में हुए थे, तो वोटर टर्नआउट किस तरीके का आप देख रहे हैं, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं वोट के लिए? और
अभी तक आपके पास जो वोटर टर्नआउट है वो मोटा मोटी पिछले बार के करीबन करीबन है। यूजुअली कहा जाता है कि अगर भारी मतदान हो तो बदलाव की एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
और हाल ही में लोकसभा जब चुनाव हुए हैं, तो उसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज रहा या जो वोटर टर्नआउट रहा, उसके मुकाबले इस बार ज्यादा बेहतर या कैसा प्रदर्शन रहा?
मुझे लगता है कि उतना ही रहेगा, क्योंकि पिछले बार की जो लोकसभा चुनाव थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे और वहां पे भी काफी आपने देखा ही था कि टक्कर का लड़ाई था, तो ये मुझे लगता है कि वैसे ही रहेगा। ये इलेक्शन में कोई कम दिलचस्पी नहीं है लोगों को, कुछ एक आध जगह की सवाए बाकी हर जगह में वोटर टर्नआउट अच्छा है। आपको मालूम ही है कि गुरुग्राम में वोटर टर्नआउट उतनी अच्छी कभी भी नहीं रही है, इस बार भी शायद ना रहे, क्योंकि गुरुग्राम और मोर और लेस अब एक अर्बन पॉकेट बन गया है, दिल्ली का एक हिस्सा कह सकते हैं। और उसी अगर आप 5 बजे का वोटर टर्नआउट देखें तो 60 के ऊपर जा रहा है
जी,
तो काफी मतदान काफी आपका भारी संख्या में होने लग गया है
जी। विमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है इस बार?
नहीं, महिलाओं की इक्वल पार्टिसिपेशन रही है, ये उस पहले जैसे इलेक्शंस नहीं है। हरियाणा में पहले जैसे कहा जाता था कि मतदान जो है वो पुरुष तय करता है कि क्या होगा
जी,
और उनकी घर की लड़कियां हैं वो उनको फॉलो करती थी, वो चीज चली गई है। हरियाणा काफी डेवलप्ड हो गया है, हरियाणा में वुमेन पावर काफी विकसित है। आपने देखा ये पोगट साहब, पोगट मेहम साहब भी खड़ी हुई
जी, है जी, बिल्कुल।
तो ये अपने में कह सकते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट है, पार्टी के विशेष से नहीं, ये अपने से हुआ है। हरियाणा में एक सोशियोलॉजिकल चेंज आई है
जी,
जो बेहतर के लिए है, और उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आज के तारीख में ऐसा हो सकता है कि पुरुष एक तरफ वोट दे और महिला उसी परिवार का दूसरे तरफ वोट दे।
फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं, जो अब पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या मे बी जिन्होंने लोकसभा चुनावों में वोट डाला, उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं?
देखिए, जैसे कहा कि युवा पीढ़ी की जो अपेक्षा है वही फर्स्ट टाइम वोटर्स की है, उनका सोच ये है कि किस तरह से वो अपना या तो अपना कारोबार कर पाए या अपना कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिले, क्योंकि कृषि में अब हमारी जो कैपेसिटी है हरियाणा में लेबर को लेने के लिए वो बहुत सीमित है। काफी हद तक मेकेनाइजेशन हो चुका है और फार्म साइजेस भी काफी घट गए हैं, ये छोटे फार्म हो गए अब, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो नौकरी करेंगे काम करेंगे वो हो नहीं पा रहा है, तो आपको उसी लिए बाहर खेती के बाहर आपको सोचने पड़ेगा और देखने भी पड़ेगा
जी। किसानों के जो जयंत जी मुद्दे रहे उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के क्या प्रोमिसेस रहे?
सभी ने बोला है कि किसानों के जो फसल की जो कह सकते हैं आप बीमा हो या फसल की जो भरपाई हो वो अच्छी तरह से देंगे। सिर्फ युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे, युवा पीढ़ी सिर्फ नहीं, इसमें आप कह सकते हैं किसानों का भी एक बड़ा अंश रहेगा जो भी जिस तरह से भी वोट जाए। और वहां पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि जातिवाद सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं रहेगा वोट के बदलाव लाने में, कृषि की जो समस्याएं हैं खास तौर से कि उनको पूरी पैसे नहीं मिलते, उनके फसल के दाम ठीक से नहीं मिलते, बिचौलियां बहुत ज्यादा है, वो समस्याएं इस बार हर इलेक्शन रैली में उठा है और नेचुरली उसका एक गूंज आपको इलेक्शन के रिजल्ट में भी दिखेगा। तो किसान, युवा पीढ़ी, ये दो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। पर आपको याद रखने पड़ेगा कि हरियाणा इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल स्टेट और वहां पे जो वर्कर है उनका संख्या कुछ कम नहीं है, और वो ज्यादातर वर्कर्स जो हैं वहीं पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, हरियाणा के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ना कि बाहर के हैं। तो वो क्योंकि इस बार जैसे हमने पहले भी बात की है कि 2020 के बाद एक कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ कुछ डिप हुआ है, तो उसका एक इफेक्ट अभी भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा है। वर्कर की इनकम में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हो रही है, जितना इन्फ्लेशन का रेट है उतना शायद उनको इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है, नौकरियों की तंगी है थोड़ी बहुत, तो ये सब फैक्टर्स भी आगे आएंगी इलेक्शंस के वक्त में। नेचुरली ये फैक्टर्स को दोनों तरफ से एड्रेस करने की कोशिश की जाती है।
लोकसभा के जो चुनावों के नतीजे रहे उसका कितना रोल रहेगा इन चुनावों में?
नहीं, स्टेट इलेक्शंस पे कुछ ना कुछ तो नेशनल इलेक्शंस के एक असर पड़ता है, पर संपूर्ण तरीके से नहीं पड़ता है। स्टेट्स के अपने मुद्दे होते हैं और नेशन के अपने मुद्दे होते हैं, तो स्टेट के मुद्दे में जब आप ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, तब ये भी बात होगी कि इस स्टेट में हमने इतना डेवलपमेंट किया है और वो दिखता है, और उस डेवलपमेंट का एक असर जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल इलेक्शंस में वहां पे जिसका वोट शेयर जिस पार्टी का घटा था वो पार्टी संपूर्ण तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में कुछ ना कुछ किया है ताकि उसका जो सिचुएशन है इम्प्रूव करे, और वो ज्यादा से ज्यादा उसने काम किया है डेवलपमेंट वर्क पे जो कि दिखता है, रास्ता हुआ या आपका अस्पताल हुआ, इसमें जितना भी डेवलपमेंट वर्क हुआ उसका कुछ ना कुछ वोट का असर पड़ेगा।
फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में क्या क्या प्रिपरेशन रही?
ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, ये सारा साल चलता है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व रहती है और ऑब्वियसली सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तो रहती है, और उन्होंने आज तक जितने भी इलेक्शन किए हैं ज्यादातर उनकी बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं स्वस्थ तरीके से उन्होंने इलेक्शन रखा है और करवाया पाए हैं, और हमें लगता है कि इस बार भी जो भी दो इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा के कहें या जम्मू एंड कश्मीर के कहें दोनों काफी अच्छे रहे, और उसके रुझान जो भी आए ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत जरूर होगी।
जेंडर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तकरीबन 1000 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उसमें 1000 के आसपास या उससे थोड़े से अधिक जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स हैं और महिला कैंडिडेट्स उसके मुकाबले बहुत कम है। इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में खासतौर से ये एक पुरानी सोच है जिसके लिए वेरियस पार्टीज कोशिश की है तोड़ने के लिए, कुछ कुछ वुमेन रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, परंतु ये अभी तक संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है
जी।
एक कह सकते हैं एक फॉर्मूला पहले से, विनिंग फॉर्मूला जो भी है उसी को वो अपनाते रहते हैं और उस फॉर्मूला के हिसाब से कह सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा रहती है। साथ ही साथ में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जिनका संख्या आप बोल रहे हैं 1000 जब कह रहे हैं तो ये वो ज्यादातर मेन होते हैं, वुमेन नहीं होते हैं, उसीलिए आपको लगता है कि वुमेन कैंडिडेट्स कम है। वुमेन कैंडिडेट्स अगर आप दोनों पार्टियां का देखें उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, परंतु जब आप संपूर्ण तरीके से कैंडिडेचर का लिस्ट लेते हैं तो उसमें मेल कैंडिडेट्स का संख्या ज्यादा रहता है।
कौन कौन सी प्रमुख सीटें हैं जहां पर वोटर टर्नआउट काफी अच्छा रहा और लोग बढ़ के वोट डालने निकले?
देखिए, रूरल हरियाणा जो है संपूर्ण तरीके से आप पंजाब की बॉर्डर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक हर जगह में आपका टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि टर्नआउट कम हो, सिर्फ टर्नआउट कुछ अर्बन पॉकेट्स में आपका टर्नआउट कम है, खासतौर से दिल्ली के निकटतम जो जगहें हैं जहां पे आपकी बहुत ऑर्गेनाइजेशन हुई है और वहां पे लोग एक्चुअली जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनको उतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है और इलेक्शन का दिन को वो छुट्टी के हिसाब से मानते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे देश में। परंतु अभी भी हरियाणा कम्प्लीटली अर्बनाइज नहीं हुआ है, यद्यपि हरियाणा में अर्बनाइजेशन की रेट बहुत हाई है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि जहां पे अर्बन पॉकेट्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेजेस नॉर्मली हाई होती है और वो इस बार भी यहां पे भी हरियाणा में दिख रहा है साफ तौर से कि इंडस्ट्रियल पॉकेट्स में वोटिंग परसेंटेजेस काफी हाई रही है।
प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में आपसे जानना चाहें, कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे?
देखिए, सैनी साहब खुद एक तरफ से और हुडा साहब तो नेचुरली एक बहुत बड़ा प्लेयर है और जैसे आपने खुद बोला
जी
कि फोगट
जी,
उनकी वो एक, क्योंकि वो एक नाम बन गई है सिर्फ हरियाणा में नहीं सारी भारतवर्ष में
जी,
तो वो एक क्राउड अट्रैक्टिंग एक कह सकते
फैक्टर,
फैक्टर है और नेचुरली उस पे सबकी नजरें टिके रहेंगी कि जीते तो कितने वोट से जीते, अगर हारे तो कितने वोट से हारे। देखने पड़ेगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होता है, वोट किस तरह से जा रहा है, क्योंकि ये इस बार का जो लग रहा है कि या तो वोट एक तरफ जाएगा या तो दूसरा तरफ जाएगा, बहुत ज्यादा ये नहीं रहेगा कि टक्कर का लड़ाई जिसे कहते हैं कि जहां पे दोनों पार्टी बहुत करीब करीब हो, वो शायद ना हो इस बार।
कोअलिशन की संभावना,
कोअलिशन की संभावना उसी लिए घट जाती है क्योंकि इस बार छोटे पार्टियों ने भी अपना मन बना लिया है कि किसके साथ रहेंगे। और हरियाणा में एजुकेटेड इलेक्टोरेट है, काफी एजुकेटेड इलेक्टोरेट है, तो वहां पे इलेक्टोरेट इज ऑल्सो अनफॉरगिविंग। अगर आप देखें हर 5 साल में हरियाणा में बदलाव तो आया है, तो ये एक कह सकते हैं कि इलेक्टोरेट इज कीन ऑन चेंज, इज कीन ऑन गेटिंग व्हाट दे हैव बीन सीकिंग, तो इसलिए चेंज जो बदलाव की जो हवा है वो एक हरियाणा में रहती है।
आपने बदलाव की बात करी तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दों में भी बदलाव आया पिछले चुनावों के तुलना में इस चुनाव को लेकर के?
देखिए, पहले कृषि के मुद्दा बीच में कुछ हल्का पड़ गया था हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। ये एक चुनाव है जहां पे कि कृषि की जो परिस्थिति है वो फिर से उभर के आई है। हरियाणा वाज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो चैलेंजेस थे वो ज्यादा मेन मुद्दे थे, विकास के बारे में लोग ज्यादा बात करते थे, परंतु अब कृषि एक तरफ से, दूसरा तरफ से बेरोजगारी, तीसरा तरफ से युवाओं की जो तकलीफें हैं वो बातें उठ रही हैं। जेंडर जस्टिस भी आहिस्ते आहिस्ते कह सकते हैं फोकस में आ रही है और इस इलेक्शन में ना भी हो तो अगले इलेक्शनों में वो भी एक मुद्दा रहेगा।
तो श्रोताओं, आज हमने हरियाणा विधानसभा चुनावों के ऊपर चर्चा करी है और जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर हरियाणा के राजनीतिक भविष्य का फैसला किया है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे और इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और जयंत जी, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी।
अभी आप सुन रहे थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जयंत रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।